ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली की अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने रद्द और स्थगित परीक्षाओं के लिए तारीखों की घोषणा की। यूजीसी नेट परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर, सीएसआईआर यूजीसी नेट 25 से 27 जुलाई और सामान्य प्रवेश परीक्षा 10 जुलाई को होगी। राजधानी दिल्ली में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, जलभराव के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चारू सक्सेना। दिल्ली की एक अदालत ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति मामले में जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ उनकी 3 दिन की हिरासत आज समाप्त हो गई थी।
आम आदमी पार्टी प्रमुख को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की मांग करने वाली ब्यूरो की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जून को अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। अरविंद केजरीवाल को अवकाश न्यायाधीश अमिताभ रावत के सामने पेश होने के बाद औपचारिक रूप से सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आप प्रमुख ने कथित शराब नीति घोटाला मामले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत पर उनकी रिहाई पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम रोक के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी याचिका वापस ले ली थी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह।
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ के समक्ष कहा कि जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले पर शीर्ष अदालत में एक नई याचिका दायर की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ये मन की बात की पहली कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रद्द और स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा कर दी है। एजेंसी ने कल जारी एक अधिसूचना में कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी। संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट अब 25 से 27 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। 4 वर्षीय अध्ययन शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया था। ये परीक्षा अब 10 जुलाई को होगी। एनटीए ने उम्मीदवारों को अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.nta.ac.in देखने की सलाह दी है। उधर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो नीट यूजी में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में अहमदाबाद और गोधरा जिलों सहित गुजरात में 7 अलग अलग स्थानों पर तलाशी की जा रही है। इस मामले में बृहस्पतिवार को सीबीआई ने पटना से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज पंचकुला में ताऊ देवीलाल खेल परिसर में भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की एक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में सुधार कर रही है और पेपर लीक के विरूद्व कानूनों को सख्त बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक से संबंधित मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया है। हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए श्री प्रधान ने भरोसा जताया कि पार्टी राज्य में तीसरी बार भी सरकार का गठन करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में आज फिर हल्की से मध्यम बारिश कई क्षेत्रों में देखने को मिली। इसके अलावा आंधी और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली परंतु अतिरिक्त पानी और उमस का भी सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के नरेला, बवाना, पालम, सफदरजंग, कंजनवाला, नेहरू स्टेडियम, आईजीआई एयरपोर्ट और आरके पुरम समेत अन्य इलाकों में तेज बारिश हुई। इसके अलावा गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और अन्य एनसीआर क्षेत्रों में भी बारिश देखी गई। इस बीच सरकार और विपक्ष में वर्षा से हुई परेशानियों पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस ने आज राजधानी के मलकागंज में गंदे पानी, सीवर लाइन और जलभराव जैसे मुद्दों पर एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल की। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार अभी तक बारिश से हुई समस्याओं से निपटने के लिए असक्षम साबित हुई है। मीडिया से बात करते हुए श्री यादव ने कहा कि सरकार को मॉनसून के बारे में पहले से ही अलर्ट किया गया था। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां जलभराव ना हुआ हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पार्क या रिहायशी इलाका हो। सरकार पर लगे आरोपों का खंडन करते हुए दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस से एक दूसरे से न लड़ने की अपील की। श्री भारद्वाज ने अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस को कहा कि देश में विपक्षी दल संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके बीच फूट अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा श्री भारद्वाज ने देवेंद्र यादव के बयान पर हताशा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले दो विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को दिल्ली में शून्य सीटें मिली, जिसके कारण वो स्थानीय स्तर पर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा ने भी दिल्ली सरकार पर कई कठोर आरोप लगाए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के 714 नालों में सिर्फ 150 नालों की सफाई हुई है, जिससे पानी जमने की समस्या बढ़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने राजधानी को लेकर सौतेले रवैया दिखाया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज जल जमाव से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों और नालों का निरीक्षण कर संबंधित एजेंसियों को साफ सफाई का निर्देश दिया। श्री सक्सेना ने दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा और बांसुरी स्वराज के साथ तैमूर नगर, बारापुला ड्रेन, आईटीपीओ, तिलिक ब्रिज, कुशक नाला और गोल्फ लिंक का दौरा किया। अपने निरीक्षण में उपराज्यपाल ने पाया कि इन सभी क्षेत्रों की नालियां भारी गाद और कचरे के कारण बुरी तरह से जाम हो गई थीं और शहर में पानी का विकल्प शुरू हो गया था। इसके अलावा उन्होंने पाया कि अतिक्रमण के कारण नालियां और सीवर लाइनें भी जाम हो गई हैं। श्री सक्सेना ने कहा कि इन सभी नालों की सफाई जून मध्य तक हो जानी चाहिए थी। उन्होंने संबंधित एजेंसियों को युद्ध स्तर पर नालों से गाद निकालने, नालों के किनारे से सभी कचरा, मलबा और कीचड़ एवं गाद को जल्द से जल्द हटाने का निर्देश दिया। राजधानी के कुछ इलाकों में आज मध्यम से हल्की बारिश होने के कारण कुछ क्षेत्रों में जल जमाव देखने को मिला। उधर मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम रहते हुए 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा शहर के कुछ क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्रता से तेज हवाओं की भी संभावना है। राजधानी में आज वायु गुणवत्ता का स्तर सामान्य रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शाम 4 बजे तक वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रहा और वायु गुणवत्ता सूचकांक 118 दर्ज किया गया। 0 से 50 तक वायु गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है, 51 से 100 तक के बीच वायु गुणवत्ता संतोषजनक है, 101 से 200 के बीच सामान्य, 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बहुत खराब मानी जाती है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सभी एयरलाइनों से कहा है कि वे हवाई किरायों में स्थिरता बनाए रखें ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। कल भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत गिरने के कारण इसके अस्थायी रूप से बंद होने के मद्देनजर सभी एयरलाइनों को एक एडवाइजरी जारी की गई ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस स्थिति के कारण हवाई किराये में भारी वृद्धि न हो।
केंद्रीय मंत्री नायडू ने प्रमुख अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यात्री सुरक्षा और सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्रालय सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मौजूदा चुनौतियों का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने और हवाई अड्डों के समग्र सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। नागर विमानन मंत्रालय की कड़ी निगरानी में 2400 घंटे वॉर रूम स्थापित किया जाएगा। वॉर रूम उड़ानों का पूरा रिफंड सुनिश्चित करेगा या उपलब्धता के अनुसार वैकल्पिक यात्रा मार्ग टिकट प्रदान करेगा। सभी रिफंड 7 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर दिए जाएंगे। टर्मिनल T2 पर इंडिगो एयरलाइन के लिए वॉर रूम हेल्पलाइन 7428748308 है और T3 पर 7428748310 है। स्पाइस जेट के लिए T3 पर हेल्पलाइन है 01244983410, 01247101600 और 97120984। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि इंजीनियरों को टर्मिनल T1 पर हुई घटना का तुरंत आकलन करने के लिए कहा गया है। आगे की जांच का निर्णय उनके प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर किया जाएगा। बैठक के दौरान भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण को सभी छोटे और बड़े हवाई अड्डों के भवनों का गहन निरीक्षण करने के लिए एक परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया है। ये कहा गया है कि निरीक्षण अगले 2 से 5 दिनों के भीतर पूरा किया जाए और रिपोर्ट नागर विमानन मंत्रालय को सौंपी जानी चाहिए। राजधानी की दक्षिण रिज में 1100 पेड़ों की अवैध कटाई के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। ये अपनी रिपोर्ट दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को सौंपेंगी। इस कमेटी में दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी और इमरान हुसैन होंगे। इस कमेटी की रिपोर्ट उच्च न्यायालय को भी पेश की जाएगी। एक प्रेस वार्ता के दौरान सरकार ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रिज क्षेत्र का दौरा किया था और उनके मौखिक आदेश पर पेड़ काटे गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज 18वां सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है। 2007 से भी 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सांख्यिकीविदों के अद्वितीय योगदान के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महलनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। इस साल का विषय है निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। इस दिन नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगड़िया भी शामिल हुए। इस अवसर पर डॉ पनगड़िया ने कहा कि वर्तमान समय की मुख्य चुनौती विश्वसनीय, मजबूत और सही सांख्यिकी का संकलन करना है, जिससे वैश्विक तौर पर डिजिटल और अन्य चैनलों के माध्यम से सूचनाओं की मांग से निपटा जा सके। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि युग युगीन भारत संग्रहालय देश की यात्रा को दिखाएगा। नया संग्रहालय सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनने जा रहा है। बारबाडोस में T20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मैच अब से कुछ देर बाद 8 बजे से शुरू होगा। इससे पहले वर्ष 2007 में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारत ने पहला T20 विश्व कप जीता था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने रद्द और स्थगित परीक्षाओं के लिए तारीखों की घोषणा की। यूजीसी नेट परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर, सीएसआईआर यूजीसी नेट 25 से 27 जुलाई और सामान्य प्रवेश परीक्षा 10 जुलाई को होगी। राजधानी दिल्ली में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, जलभराव के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।